Sunday Law Office lecture is by Kamalachand Prabhu.
हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत करते हैं हर रविवार को जो होने वाला संडे प्रोग्राम है, प्रीति भोज कार्यक्रम है। अब प्रायः सभी रविवार को आते हों, लेकिन ये हर रविवार को आना और रोज़ हमारा जप करना, साधुओं का संग करना, भागवत पढ़ना, इन सारे कार्यों को भक्ति कहा जाता है। लेकिन इन कार्यों को तो भक्ति कहा जाता है, लेकिन भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है, तो उसको थोड़ा सा हम आज जानने के लिए प्रयास करेंगे। आप जब कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उस शब्द का व्याख्या होती है, उस प्रकृति का एक डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है। तो ऐसे समझ लीजिए, आपने कुछ शब्द कहा, जैसे आप पानी या जल कहा, उस जल की कुछ परिभाषा होती है। मान लीजिए आपने कोई एक केला करके शब्द इस्तेमाल किया, अंगूर केला नहीं होता है, आम केला नहीं होता, केला केला होता है, तो एक केला शब्द का परिभाषा होता है। उसी प्रकार ये जो भक्ति हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो ये भक्ति शब्द का परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो जानने के लिए प्रयास करेंगे। जब तक एक वस्तु की परिभाषा नहीं जानोगे तो कोई और वस्तु को समझोगे वो वस्तु है। मान लीजिए आप मार्केट में गए गुलाब का फूल लाने के लिए, तो कोई गए गुलाब का फूल लाने के लिए, उसको मालूम ही नहीं गुलाब का फूल क्या है, उसके जगह पे कोई और लेके आ जाएगा, कोई और जिसको गुलाब समझेगा। तो इसलिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो ये भक्ति शब्द का परिभाषा जो है वो जानना चाहिए। अगर वो परिभाषा नहीं जानेंगे, कोई और चीज़ को भक्ति मान के बैठ जाएंगे। अगर भक्ति नहीं भी कर रहा हो तो सोच रहा होगा मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो इसलिए आज हम थोड़ा सा ये भक्ति शब्द, खास करके उत्तम भक्ति, ये जो शब्द हैं उसकी परिभाषा, डेफिनेशन जानने के लिए प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने हमको एक ग्रंथ प्रदान किया है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु मूल रूप में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने रचना किया। श्रील रूप गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था, तो जाके आप वृंदावन में जाके ग्रंथों की रचना करो। खास करके चैतन्य महाप्रभु ने कहा रूप गोस्वामी पाद को, मैंने ये 10 दिनों में तुमको जो भी शिक्षा दिया है, श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी बीच में संवाद हुआ था प्रयाग में, दशाश्वमेध घाट में 10 दिन तक संवाद हुआ। उस संवाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिक्षा प्रदान किया। किसका शिक्षा प्रदान किया, भक्ति का शिक्षा प्रदान किया। भक्ति क्या है, उत्तम भक्ति क्या है, और उसको कैसे हमको पालन करना चाहिए, ये उत्तम भक्ति में कितने स्तर हैं, कितने अधिकारी हैं, उसके अनेकों अनेकों अंग क्या हैं, उन सब के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु ने संक्षिप्त में रूप गोस्वामी पाद को कहा था। और चैतन्य महाप्रभु जो रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा दिया, उसके साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को शक्ति प्रदान किया, शक्ति आवेश किया, जिसके द्वारा रूप गोस्वामी पाद इस बात को समझे। तो रूप गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा ग्रहण करके तो उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु तो ये बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है हमारे गौड़ीय वैष्णव धारा में। तो श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे ये भक्ति रसामृत सिंधु नामक जो ग्रंथ है वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक लॉ बुक है। लॉ बुक का अर्थ क्या है, संविधान का, ये कानून का बुक है। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, ट्रैफिक का कानून मालूम नहीं है तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, नहीं तो आपको पुलिस पकड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप इस संस्था से जुड़े हो, भक्ति से जुड़े हो, तो इसका अगर नियम कानून नहीं मालूम है तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, नहीं तो पुलिस आएगा, पुलिस मतलब यमराज आएंगे। तो कोई कहे प्रभु जी हम तो कर रहे थे लेकिन मालूम नहीं था, इसके पीछे एक छोटा सा एक घटना बताऊंगा। एक बड़ा कॉलेज था, लॉ का कॉलेज था, तो बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया प्रवचन देने के लिए उधर लॉ के ऊपर, तो कानून क्या होता है। उसमें एक क्रिमिनल लॉयर थे, बड़े प्रसिद्ध लॉयर, क्रिमिनल लॉयर जो क्राइम करते हैं उनको उनको उनके उनको संभालने वाले जो लॉयर हैं, क्रिमिनल लॉयर को बुलाया। तो वो क्रिमिनल लॉयर से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा क्राइम जुर्म क्या है, सबसे बड़ा क्राइम क्या है। तो उन्होंने बोर्ड के ऊपर लिखा, आई डोंट नो द लॉ इज द बिगेस्ट क्राइम। तो उन्होंने कहा मुझे कानून नहीं मालूम है, यही सबसे बड़ा जुर्म है। मान लो कोई व्यक्ति ने जुर्म किया तो उसने कोर्ट में पूछा गया ये जुर्म क्यों किया, तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कानून, तब उसको बोला गया तो ये सबसे बड़ा जुर्म है। तुमने किसी को खून किया वो बड़ा जुर्म नहीं है, खून नहीं करना चाहिए, ये कानून अगर करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, ये कानून नहीं मालूम होना ये सबसे बड़ा जुर्म है। कुछ लोग बोलते पूछ तो मैं तो अनजान हूं। तो जानकारी नहीं होना, नहीं जानना, इससे बढ़कर कोई जुर्म है नहीं। कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर है, तो पेशेंट ने पूछा मुझे कैसे आ गया कैंसर, आपने बहुत सिगरेट पिया ना इसलिए, तो मुझे तो मालूम नहीं था। व्यक्ति ने कहा मुझे नहीं मालूम था कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। डॉक्टर के अपना सिगरेट की पेटी के ऊपर लिखा था, पढ़ा नहीं, पता नहीं मैं कभी पढ़ा नहीं प्रभु जी। तो डॉक्टर ने कहा तुम पढ़ो ना पढ़ो जुर्म तो कर दिए हो, अस्तित्व में ये सबसे बड़ा जुर्म है कि तुमको मालूम नहीं है सिगरेट पीने से कैंसर होता है। उसी प्रकार हमारी जो मासूमियत है, तथाकथित मासूमियत है, नहीं जानना, इससे बढ़कर कोई और जुर्म नहीं है। भगवद्गीता भागवतम में सब चीजें प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा, ताकि हमको जानकारी हो भक्ति क्या होती है, हम उसको कैसे करना चाहिए। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे हम करेंगे कैसे, हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी इतने सारे आचार्यों के ग्रंथ हैं, व्यास देव के द्वारा लिखा हुआ भागवतम है, सब चीजें हैं, उनको अनुवाद किया हमारे लिए, ताकि हमको ये सब बातें समझ में आए, पढ़े जाने और समझ में आए, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से पालन कर सकें। तो ये कहना कि मुझे मालूम नहीं है, ये समझना ये सबसे बड़ा जुर्म है। तो इसलिए मालूम करना चाहिए क्या है भक्ति, क्या है उसका लक्षण, क्या है उनका परिभाषा, क्या है उनके अंग क्या है। तो इन सब बातों को श्रील प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों को उन्होंने कहा, ये हमारे लिए लॉ बुक है, कौन सा है, भक्ति रसामृत सिंधु। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आपको ये ट्रैफिक का रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम होना चाहिए, उसी प्रकार जब भक्ति करने के समय में हमारे जो भक्ति का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो कानून है, वो मालूम होना अनिवार्य है। आवश्यकता की बात नहीं है इधर, अनिवार्य है। आवश्यकता हो सकता है कि अभी नहीं बाद में हो, ऐसा कोई बात कर सकता है, ये अनिवार्य है जानना। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा ये जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, इस ग्रंथ का थोड़ा सा आपको परिचय दिया जाए। वैसे शिल भक्ति शिल रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु को रचना करने के बाद, तो इसके ऊपर शिल जीव गोस्वामी पाद, शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद और एक आचार्य ने उन्होंने इसके ऊपर व्याख्या किया है। तो ये जो शिल जीव गोस्वामी पाद ने व्याख्या किया ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है, क्योंकि श्रील जीव गोस्वामी पाद श्रील रूप गोस्वामी पाद के सान्निध्य में रहते थे, और रूप गोस्वामी पाद के जो लिखे गए ग्रंथों को वो एडिट करते थे। रूप गोस्वामी पाद के एकदम परम सेवक थे चिरंजीव गोस्वामी पाद। तो रूप गोस्वामी पाद के हृदय में जो है क्या है वो केवल कौन जानते हैं? वो केवल रूप जीव गोस्वामी पाद जानते हैं। और दूसरी बात है जो रूप गोस्वामी हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु को हृदय को जानते हैं। जैसे हम रूप गोस्वामी पाद के विषय में हम चर्चा करते हैं, उनका प्रणाम मंत्र है इस प्रकार है, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामहिं ददाति स्वपदांतिकम। हम प्रार्थना करते हैं रूप गोस्वामी पाद आपके चरण कमलों के सान्निध्य में हमको कब रखोगे, ददाति सान्निध्य का स्थान कब दोगे। तो है कौन रूप गोस्वामी पाद? जो श्री चैतन्य मनोविष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की अभिलाषा को जान लिए, मन को जान लिए। देखिए एक व्यक्ति को जानना, नाम से जानना ठीक है, वो कैसे दिखता है वो जानना, वो एक ठीक है, लेकिन भगवान को या किसी व्यक्ति का मन को जानना जो है वो तभी संभव है जब आप उनसे प्रेम करते हो। उनको बोले बिना, उनके सुने बिना उनके मन में क्या चल रहा है वो जान लेता है व्यक्ति। सो सबसे परम शिष्य उसी को माना जाता है जो गुरु के हृदय में क्या चल रहा है वो जाने, और वही सबसे अच्छा पति या पत्नी वही है जो बिना बोले पति का हृदय की बात जान ले। जिसका आप जिससे प्रेम करते हो तो आपको एक विशेष गुण हो जाता है, बिना वो व्यक्ति बोले उनके मन में क्या हो रहा है उसकी बात आप पहचान लेते हो। तो मन की बात तो जानना ये तभी संभव है जब आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हो। भगवद गीता में कहा गया है भगवान कौन है, भागवत में कहा गया है भगवान क्या करते हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत में कहा गया है भगवान क्या सोचते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की मन की बात को जानने वाले श्री रूप गोस्वामी पाद हैं। एक बार रथ यात्रा हो रही थी, वैसे आज भी रथ यात्रा है बोरीवली में और जगन्नाथ कथा भी शुरू हो रही है, तो रथ यात्रा खूब धूमधाम से हो रहा है, रूप गोस्वामी पाद भी थे उस समय, और चैतन्य महाप्रभु ऐसे हर साल की तरह रथ यात्रा के समय एक बड़ा विचित्र श्लोक उच्चारण करते थे। ये श्लोक था कोई ऐसी संस्कृत की नाटिका से, जहाँ एक युवक युवती से युवक को कहती हैं, तुम वही लड़के हो जो बचपन में मेरा दिल को चुरा लिया था, अभी वो स्थान नहीं है, हम वापस जाएंगे रेवा के तट पे जहाँ बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष है और बैठ के हम मज़े से अपनी पुरानी बातें कहेंगे और प्रेम करेंगे। तो महाप्रभु इतने बड़े सन्यासी हैं और सर्वोच्च भक्ति को प्रदान करने वाले हैं, ये लौकिक नाटक का एक ड्रामा का एक श्लोक को क्यों उच्चारण कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। रूप गोस्वामी पाद ये श्लोक को बार बार सुन के वो तुरंत गए जहाँ रुकते थे, हरिदास ठाकुर के साथ में रुकते थे, हरिदास ठाकुर की कुटिया में रुकते थे सिद्ध बकुल के पास। रूप गोस्वामी पाद तुरंत गए, एक कागज़ लिए और एक पेन लिए, उन्होंने लिखना शुरू किया, एक श्लोक को लिखा। उस श्लोक को लिख के उन्होंने वो जो कुटिया होता है उसका छत होता है उसके अंदर रख दिया और रूप गोस्वामी पाद निकल पड़े समुद्र स्नान करने के लिए। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु भी पहुंचे, तब उन्होंने देखा कुछ रखा हुआ है छत के ऊपर, देखता हूँ तो निकाल के देखा, साथ में स्वरूप दामोदर भी थे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक को पढ़ के बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय रूप गोस्वामी पाद समुद्र में स्नान करके जब वापस आए तो राम चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को हल्के से झापड़ मारा, कहा हाँ मेरी मन की बात कैसे जान लिया। रूप गोस्वामी पाद को ऐसा बात करते हुए तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा, हे स्वरूप दामोदर श्लोक पढ़ो, ये मेरा मन की बात कैसे जान लिया। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि आप जब प्रयाग में उनसे मुलाकात किए थे उस समय आपने उनको गाढ़ आलिंगन किया था, उस समय रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया, आपके मन की बात जान लिया, आपने शक्ति प्रदान किया। तो ये रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक जो रचना किया था इसमें जो चैतन्य महाप्रभु गुप्त रूप में कुछ चीज को कहना चाहते थे उस श्लोक को उन्होंने व्यक्त किया। क्या था रूप गोस्वामी पाद का श्लोक जिसके अंदर रूप गोस्वामी पाद वर्णन किया, कुरुक्षेत्र मिलितस राधा प्रियम, राधारानी और कृष्ण का मिलन हुआ था कुरुक्षेत्र में, उस समय श्रीमती राधारानी ने क्या किया, कृष्ण को हाथ पकड़ते खींचते हुए लेके गई और कहने लगे कृष्ण को, देखो तुम वही कृष्ण हो, मैं वही राधारानी हूँ, और बचपन में वृंदावन मेरे हृदय को चुरा लिया था, लेकिन समस्या ये है कि अभी वही स्थान नहीं है, इधर हाथी घोड़े इतने सारे हैं, मयूर नहीं है और यमुना नहीं है, बहुत सुंदर शीतल हवा सब नहीं है, तमाल वृक्ष नहीं है, इसलिए भले ही आप वही कृष्ण हो वही राधारानी हो, जगह वो नहीं है, कुरुक्षेत्र है, इसलिए हम चलो इधर से करके राधारानी खींचते हुए वृंदावन की ओर लेके गए कृष्ण को। तो ये जो बात बड़े गुप्त रूप में चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे थे रथ यात्रा में, और इस बात को श्री रूप गोस्वामी पाद ने जान ली, इसलिए रूप गोस्वामी पाद को सर्वश्रेष्ठ गोस्वामियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो रूप गोस्वामी पाद ये ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, और जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु हृदय को जान लिया तो समझना चाहिए कि सर्वोच्च है, और रूप गोस्वामी पाद का हृदय को कौन जान सकता है, जीव गोस्वामी जान सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा भक्ति रसामृत सिंधु के कुछ श्लोकों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए हम चर्चा करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु उसका पहला श्लोक क्या है, जिसके अंदर वस्तु निर्देश यानी ये सब्जेक्ट जो है भक्ति रसामृत सिंधु किसका वर्णन कर रहा है, किस व्यक्ति का वर्णन कर रहा है करके इसमें वर्णन किया जा रहा है पहले श्लोक में। अखिल रसामृत मूर्ति परस्पर रुचिरुद्धतार कपालिः कलितश्यामा ललितो राधा प्रियान् विदुर जयति। ये भक्ति रसामृत सिंधु का पहला श्लोक है कि मान लीजिए आप भगवद गीता पढ़ते हो कम से कम पहला श्लोक याद कर लेते हैं, भागवतम पढ़ते तो पहला श्लोक याद कर लेते हैं, वैसे ही जो भक्ति रसामृत सिंधु का यह पहला श्लोक है उसको भी याद कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला इधर कहा गया है अखिल रसामृत सिंधु अखिल रसामृत मूर्ति ही रसमर रुचिरुद्ध तारक पाली ही कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विदुर जयति विदुर जयति। तो ये जो श्लोक में कृष्ण को संबोधित किया गया है, कृष्ण को सीधा नाम से नहीं पुकारा, कृष्ण का नाम इस श्लोक में आता ही नहीं है, लेकिन विधु शब्द के द्वारा रूप गोस्वामी पाद ने कृष्ण को सूचित किया। कभी कोई कोई बात सीधा भूला जाता है तो उसका असर इतना नहीं रहता है, कभी उसको आप थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोलोगे तो उसका ज़्यादा गहरा असर रहता है लोगों के मन में, क्योंकि विचार करते क्या बोल रहा है, ये साहित्य की शैली होती है, कोई भी बात जो है सीधा नहीं बोला जाता है। जैसा मान लो कि बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, बहुत नटखट है, माँ क्या बोलेगी बच्चे को, बेटा बहुत अच्छा बच्चा हो तुम अच्छे बच्चे हो ना, तो बच्चा अच्छा नहीं होने पर भी अच्छा बन जाता है, क्यों, क्योंकि माँ ने कहा ना मैं अच्छा बच्चा हूँ, असली में माँ ने उल्टे तरीके से कहा, ये थोड़ी ना माँ बोल रही है तुम अच्छे बच्चे हो। तो इस प्रकार विदुर चेति विधु शब्द के द्वारा श्री चैतन्य श्री रूप गोस्वामी पाद ने कृष्ण को संबोधित किया। वैसे देखा जाए विधु जो है किसको सूचित करता है, चंद्रमा को सूचित करता है, मान लो अभी किसी का नाम रख सकते विधु, विधु मतलब चंद्रमा। तो पहला श्लोक अगर ऐसे देखा जाए चंद्रमा को स्तुति कर रहा है, क्योंकि अखिल रसामृत मूर्ति वो चंद्रमा के द्वारा ही क्या प्राप्त होता है, सारे औषधियों में रस प्राप्त होता है, सारे सब्जियों में रस प्राप्त होता है, टेस्ट प्राप्त होता है, इसलिए चंद्रमा को अखिल रसामृत मूर्ति भी कहा जाता है। और रुचिरुद्ध तारकपाली, तारकपाली ताराएं होती हैं, पाली नामक तारा है वो भी उनके आजू बाजू में घूमते रहते हैं, श्यामा और ललित भी उनके साथ साथ में रहते हैं, और राधा प्रियान, राधा मतलब प्रेम है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते विशाखा नक्षत्र के साथ। तो अगर एक बार देखा जाए ये जो विधु शब्द जो है ये चंद्रमा को सूचित किया जा रहा है, लेकिन रूप गोस्वामी पाद ये विधु शब्द के द्वारा कृष्ण को भी वो वर्णन करते हैं। कैसे वर्णन करते हैं कृष्ण का, कृष्ण का वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कृष्ण का नाम है, क्यों, विधु का दो अर्थ है, एक है विधुनोति, दूसरा है विदधाति। वि मतलब विशेष रूपेण, विशेष रूपेण धनोति, विशेष रूपेण दाति। तो विदु शब्द का दो अर्थ है और दो अर्थ के अंदर तो दो दो बातें हैं, इसलिए विदु का टोटल चार अर्थ है। सबसे पहला अर्थ ये कि खंडयति सर्वदुःखानां, श्री जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कृष्ण का स्वभाव है, क्या है, सर्वदुःखानां खंडयति। खंडयति मतलब खंडन करते, किसको खंडन करते हैं, सारे दुखों को खंडन करते हैं। खाली कृष्ण के पास आने मात्र से सारे दुख खत्म हो जाते हैं, इसलिए कलयुग में लोग मंदिर में आते हैं। वैसे देखा जाए कलयुग में हम क्या बोलते हैं, लोग अधर्म बढ़ रहा है, लेकिन आपको लगता है अधर्म बढ़ रहा है, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, भक्तों की संख्या बढ़ रही है, हाँ एक तरीके से देखा जाए अधर्म बढ़ रहा है अगर कोई कह सकता है, लेकिन दूसरे तरीके से देखेंगे, अभी आप देखो कितने सारे ग्रंथों का वितरण हो रहा है, बहुत सारे ग्रंथों का वितरण हो रहा है। भक्तिनाथ ठाकुर के समय उनको चैतन्य चरितामृत का एक कॉपी प्राप्त करने के लिए 17 साल लग गया। तो एक बार गदाधर पंडित से उनको श्रीनिवास आचार्य को सीखना था भागवतम, तो भागवतम सीखने के लिए जब आए तब गदाधर पंडित जो है वो आंखों में से अश्रु गिरने लगा, बहने लगा बहने लगा, पूरा भागवत गीला हो गया था। तो उनको भेजा, जाओ भागवतम लेके आओ। पूरा उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में भागवतम का और एक कॉपी था नहीं, उसके लिए उनके पास बंगाल में जाके आना पड़ा। देखिए अभी आपको जितना फोन करके बोल दो हमको 100 कॉपी भागवतम चाहिए, तुरंत आपके घर में पहुंच जाएगा। हाँ तो अभी आप देखिए, हाँ पहले 40-50 साल पहले की बात है, 25 साल पहले की बात है, अगर आप धोती कुर्ता पहन के बाजार में जाते थे लोग जो है वो हंसते थे, लेकिन गेरुआ वस्त्र पहन के अभी आजकल ब्रह्मचारी लोग कॉलेज के अंदर जाते प्रवचन देने के लिए, बड़े आदर से निमंत्रण देते हैं। तो एक तरीके से देखा ऐसा लगता है कि अधर्म जो है बढ़ रहा है, लेकिन असत्य धर्म का भी उतना ही बढ़ रहा है। कैसे हैं आप जान सकते हो, कलयुग में जितना दुख होता है, कलयुग क्या है, लोग सब दुखी हैं और उस दुख का निवारण करने के लिए उनका कोई और सहारा नहीं है, एकमात्र सहारा है भगवान श्री कृष्ण। मान लो जी आपके जीवन में कोई दुख होता ही नहीं है, कोई आता मंदिर में, कोई नहीं आता, असल में भगवान श्री कृष्ण की सान्निध्य मात्र से खंडयति सर्वदुःखानां, सारे दुखों को तुरंत नाश करते थे, इनका सबसे पहला स्वभाव है। दूसरा क्या है, अतिक्रमेति सर्वम चेति, सर्वम सारे चीजों में अतिक्रमण करते हैं, यानी उनके बराबर कोई नहीं है, गुणों के हिसाब से देखो, ऐश्वर्य के हिसाब से देखो, कोई चीज के हिसाब से देखो, सारे लोगों को अतिक्रमण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए स्वाभाविक तरीके से हमारा प्रवृत्ति रहता है, मैं उस व्यक्ति से मिलूं जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अतिक्रमयति मतलब सारे लोगों को अतिक्रमण करने वाले हैं, ये है, ये दूसरा गुण है विदु शब्द का, दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ क्या है, करोति सर्वसुखम, भगवान क्या करते हैं, सारे लोगों को अद्भुत सुख को प्रदान करते हैं। जो सुख कृष्ण प्रदान कर सकते हैं कोई भी इस जगत में सुख प्रदान कर नहीं सकता। और सर्वम चेति क्या, ये जितने भी चीजें आपको इस जगत में दिखाई पड़ रहा है वो सारे चीजें जो है भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होता है। इसलिए ये चार चीजों को पहला ही श्लोक में वर्णन किया गया है। सबसे पहला क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जो है सारे दुखों को वो नाश करते हैं। दूसरा उनका गुण क्या है, वो अतिक्रमेति सर्वम चेति, सारे लोगों को सबको अतिक्रमण कर लेते हैं, सरपासिंग अदर्स। और तीसरा गुण क्या है, वो सबको सर्वोच्च आनंद को प्रदान करने वाले हैं। और अंततः कि हम देखते हैं श्री कृष्ण जो है वो सारे लोगों के स्रोत है, सर्वम चेति इस जगत का स्रोत है, सारे देवी देवताओं के स्रोत है, सारे जितने भी भगवत तत्व है, विष्णु तत्व है, वो सारे तत्वों के स्रोत है। इसलिए ये चार गुण कृष्ण के अंदर होने की वजह से कृष्ण को विधु कहा गया है। अब देखिए भक्ति सामर सिंधु में कृष्ण का सबसे पहला नाम क्या है? विधु है। आपको मालूम है भागवतम में सबसे पहला नाम क्या है कृष्ण का? ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो थोड़ा सा साइड में रखिएगा, वो जन्माद्यस्यता श्लोक निकालेंगे। कृष्ण का सबसे पहला नाम क्या है भागवतम में? अनिमेश नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषः सौनकादयः। अभी आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहला नाम कृष्ण। हम लोग नाम का आधार बोलते हैं ना, कलयुग नाम आधार, नाम तो जप करते हैं कृष्ण का। तो शास्त्रों में कृष्ण का नाम सबसे पहला नाम कौन सा हो तो मालूम होना चाहिए। तो विधु नामक जो ये है, विधु शब्द जो है, ये कृष्ण को सूचित करता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण को कैसे पुकारा गया? सबसे पहला विधु पुकारा गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण के अंदर ये चार लक्षण है। सबसे पहला क्या है? सारे दुखों को नाश करते हैं, और सबसे परे है सर्वम अतिक्रमेति, सारे लोगों का अतिक्रम करते हैं। अगर मान लो कोई कहे ये टॉप मोस्ट है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, तो कृष्ण एकदम आगे रहेंगे। आप कुछ भी सोचो कोई व्यक्ति के बारे में, ये इतना महान है, कृष्ण उससे आगे रहेंगे। तो ये कृष्ण का स्वभाव है। और तीसरा लक्षण क्या है भगवान श्री कृष्ण? करोति सर्वसुखम, सारे लोगों को सुख को प्रदान करने वाले हैं। और चौथा है सारे लोगों के स्रोत है, सारे आध्यात्मिक भौतिक जगत, सारे व्यूह, सारे विश्व तत्व कृष्ण से प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार श्री राजीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि मैं ये कृष्ण का भजन करता हूँ, ये कृष्ण का भजन कर रहा हूँ करके रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया। और आप बोल सकते हो कि रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत जो रचना क्यों किया भाई, हाँ इसके ऊपर ऐसा व्याख्या क्यों किया गया है? उसका एकमात्र कारण है, क्या है वो? सारे भक्तों को जैसे श्री राधा गिरधारी भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की और नीता आएगी, सारे लोगों का हित करने के लिए ही जीव गोस्वामी पाद ने उसके ऊपर व्याख्या किया। और जब रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत रचना किया, उस समय हुआ क्या, कैसे रचना किया? ऐसा वर्णन कहा आता है कि स्वहृदय दिव्य कमल कोश विला विला विलसत भेर श्रीमद भागवत रसई। श्रीमद भागवत को जब रूप गोस्वामी ने उनको आस्वादन किया, श्रीमद भागवत को उन्होंने पढ़ा, तो क्या हुआ? भागवत का रस को पान करने के द्वारा रूप गोस्वामी के हृदय में भागवत का रस भर गया। तो जैसे भागवत का रस भर गया, उधर से एक कमल का प्रकाश हुआ। भागवत का रस का पान करने से उत्पन्न हुआ जो कमल है, उनके हृदय कमल, हृदय में कमल का प्रकट हुआ, वो कमल को देख के रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत को रचना किया। अब देखिए ये हमारे आचार्य है जो भागवत का आस्वादन करते हुए हमको भक्ति कैसे करना चाहिए उसका वर्णन रूप गोस्वामी पाद ने इनमें से किया। और जैसे हमने विधु शब्द का अर्थ को जान लिया, ये ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहला आपने तो कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण जो है सारे दुखों को नाश करते हैं। क्या केवल भक्तों का दुख नाश करते हैं? क्या उनके पास अन्य लोगों का दुख का नाश करने की क्षमता नहीं है? तो कहा गया है कि असुराणाम अक्ति मुक्ति प्रदत्वेन, भगवान श्री कृष्ण की दया इतना है, असुर लोग जो उनको मारने के लिए भी आते हैं उनको भी मुक्ति प्रदान करते हैं, यानी उनका दुख को भी नाश करते हैं। बाद में स्व वैभाषिक कार्यत सर्वत्वेन, तो उनका वैभव कितना है, आप किसी को भी सामने लेके आओ, कृष्ण के सामने क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। आगे कहा गया है परम पूर्व स्वरूपेण महासुख, महान सुख प्रदान करते हैं। किसको? जैसे जैसे सुख चाहिए लोगों को, वैसे वैसे सुख को भगवान प्रदान करते हैं। ऐसा सुख को प्रदान करते हैं जो मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी जो सुख मिलता है ना, उससे भी बढ़कर सुख और आनंद को प्रदान करते हैं। आगे कहा गया है, आप सबको मालूम है भगवान की प्रसिद्धि किस रूप में है कृष्ण का, कि वो सारे जितने भी विष्णु तत्व है उससे प्रकट होते हैं। भागवत में कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए हाँ, ये चार जो चीजें हैं कृष्ण के विषय में, क्या है वो, सबको, सबका दुख को हरने वाले, सबको अतिक्रमण करने वाले, सब आनंद प्रदान करने वाले, सबके स्रोत, ये विदु शब्द का अर्थ है। तो बाद में जयति, विदुर जयति, जयति क्यों इस्तेमाल किया गया है, जयति मतलब क्या, जय करना, किसके ऊपर जय कर रहे हैं भाई। अगर हम कृष्ण का शरण लेंगे हम विजयी हो सकते हैं, किसके ऊपर जय हो सकते हैं, हम ये तीनों जो गुण है जिसके द्वारा हम प्रभावित हैं, ये तीनों गुणों के द्वारा दो हम जय कर सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि मम माया दुरत्तय, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तय, ये जो गुण है ये कृष्ण का गुण है, कृष्ण का, कृष्ण से उत्पन्न हुआ है तीनों गुण। इसे उन्होंने क्या कहा, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, बहुत मुश्किल है उसको पार करना, लेकिन जो मामेव प्रपद्यन्ते, जो मेरा शरण लेता है निश्चित रूप में तीनों गुणों को पार कर लेता है। वही भगवद गीता में अन्य जगह कहा गया 14वें अध्याय में कि माम चैव विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। आप ये मत सोचो अपने बलबूते दुखों को पार कर सकते हो, केवल कृष्ण का शरण लेने मात्र से व्यक्ति दुखों से परे हो सकता है। समस्या यही है हमारा, क्या समस्या है, ये आप सोचते हो कि मैं कर दूंगा, मेरे से हो जाएगा, असल में क्या हो जाएगा। एक बार अगर कहूँ, आपके बलबूते आपका हाथ भी नहीं उठा सकते, आप बोलोगे नहीं प्रभु जी मैं उठा रहा हूँ ना, हाँ मैं चल रहा हूँ, मान लो पैरालिसिस आ गया तो हाथ है पैर है सभी, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। यही हमें भूल जाते हैं कि कृष्ण के वजह से मैं सारा कार्य कर पा रहा हूँ, कृष्ण की वजह से ही मैं हाथ उठा पा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, जो खाता हूँ हजम होता है वो भी कृष्ण की वजह से है। हम इस बात को भूल जाते हैं और इसके लिए कुछ काम नहीं होता है तो हम बड़ा चिंता करने लग जाते हैं, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने कृष्ण का शरण नहीं लिया। कृष्ण का शो शरण लेता है और ये जान लेता है प्रत्येक कार्य केवल कृष्ण की आशीर्वाद से ही होता है, उनको कोई किसी प्रकार का दुख नहीं है। इसलिए जयति, अगर हमको ये तीनों गुणों के परे होना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमको भगवान का शरण लेना है, जयति। ऐसा नहीं कि पहले के लोगों ने शरण लिया है उन लोगों को, बने को कालों पहले, अभी भी भविष्य में भी कभी भी कोई व्यक्ति अगर कृष्ण का शरण लेता है, विदु का शरण लेता है, विदु का वर्णन भी कृष्ण के हिसाब से किया ना, तो कोई भी लेता है तो निश्चित रूप में वो तीनों गुणों का परे हो जाता है। अभी विदु कृष्ण का वर्णन हुआ, अभी है कौन है कृष्ण, हम समझ गए विदु कृष्ण का नाम है, लेकिन है कौन, उनका परिचय क्या, बताइए थोड़ा सा। तो कृष्ण का परिचय देते हुए आप अनेकों लोग अनेकों अनेकों तरीके से देते हैं। भौतिकवादी क्या बोलते हैं, कृष्ण कौन है, कृष्ण वो है जो हम जो मांगे वो देने वाला हम जो मांगे वो देने वाला। लोग क्या बोलते हैं, हम भगवान के पास जाके मांगेंगे, अगर हमारी मांग पूरा नहीं किया वो भगवान नहीं है। तो ये भौतिकवादियों के मन में ऐसा विचार रहता है, जो मेरी इच्छा पूरा करता है भगवान, यानी उनके अनुसार भगवान उनके सेवक है, मेरी इच्छा को पूर्ण करने वाला भगवान है। लेकिन शास्त्र में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि भक्ति उस चीज को कहा जाता है जो भगवान की इच्छा को पूर्ण करने वाली जो चीज है उसको भक्ति कहा जाता है। लेकिन भक्ति के नाम पे आजकल क्या चल रहा है, मेरी इच्छा जो पूर्ण करता है वो भगवान है, और भक्ति क्या है, भगवान के पास जाके हमारी इच्छाओं को व्यक्त करना। लेकिन इधर कृष्ण का परिचय कैसे हुआ है, देखिए कृष्ण कौन है, हु इज कृष्ण। कोई व्यक्ति बोलते है भगवान, कोई व्यक्ति बोलता है कि वो सारे सृष्टि के सृष्टिकर्ता पालन करना करता। लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने गौड़िया धारा के अनुसार कृष्ण का आप पहचान देते हैं। अगर आप किसी आपसे किसी ने पूछा कृष्ण कौन है, तो आपको क्या परिचय देना चाहिए? कृष्ण अनेकों अनेकों तरीके से अपने आप को प्रकाशित करते हैं अलग अलग लोगों को। जो नास्तिक होते हैं उनके लिए कृष्ण कौन है? नास्तिक है कृष्ण, भी वो भी नास्तिक बन जाते हैं, इसलिए बुद्ध के रूप में आए कि नहीं। तो जो लोग हैं जो कृष्ण से द्वेष करते हैं उनके लिए कृष्ण अलग तरीके से प्रकट होते हैं। तो अलग अलग लोग कृष्ण को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन आप इस्कॉन में आते हो और गौड़िया धारा से जुड़े हुए हो, तो जब आप कृष्ण को देखोगे तो किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कृष्ण को? रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, अखिल रसामृत मूर्ति। कौन है कृष्ण? कृष्ण है अखिल रसामृत मूर्ति। सारे जितने भी रस हैं उसके मूर्तिमान स्वरूप है। तो शास्त्रों में 12 प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है। 12 प्रकार के रस हैं, उनमें से 5 मुख्य रस हैं और 7 गौण हैं। पूरा भक्ति रसामृत सिंधु ये 12 रसों का वर्णन करने वाला ग्रंथ है, इसलिए उसका नाम भक्ति रसामृत सिंधु पड़ा। तो कृष्ण कौन है? ये 12 रसों से युक्त 12 रसों के मूर्तिमान स्वरूप है। शांत, दास, साक्षी, वात्सल्य, माधुर, ये 5 रस है, और साथ साथ में अद्भुत, विभत्स, भयानक, रौद्र, करुणा, ये ऐसे रसों से भरे हुए व्यक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण। लोग बोलते हैं भगवान कोई शक्ति है, नहीं ऐसा नहीं, कोई शक्ति नहीं है, वो एक एक कंप्लीटली इमोशनल पर्सन है। जैसे हमारे अंदर कुछ भावनाएं होती हैं, उसी प्रकार भगवान में अंदर भी भावना होती है, पूरे भावनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति है। जैसे हमारे अंदर कुछ इच्छा होती है किसी से बात करो, वैसे कृष्ण के पास भी ऐसी इच्छा होती है किसी से बात करो, लेकिन हमारा मंद बुद्धि की वजह से कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते। अस्तित्व में जैसे आप एक व्यक्ति हो और आपके पुत्र या पुत्री, आपका पति या पत्नी एक व्यक्ति है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी एक व्यक्ति है जो भावनाओं से युक्त है, लेकिन अंतर यह है कि वो परम पुरुष है, ये सुप्रीम पर्सन, अखिल रसामृत मूर्ति, जो 12 रसों से परिपूर्ण है, उनको कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण का परिचय इस प्रकार दिया गया है, सरल भाषा में कहा गया कृष्णा इज ए रस बॉय, रसों से परिपूर्ण है। आप जिस रस को आस्वादन करना चाहते हो वो सारा रस जो है कृष्ण से उत्पन्न हो सकता है, कृष्ण से आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे आजकल लोग टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, क्यों देखते हैं? तो कुछ रस प्राप्त करना चाहते हैं, मन जो है हमेशा लालायित रहता है रस को पान करने की। हाँ, कोई बच्चा जो है पिक्चर में फाइटिंग सीन देखना चाहता है कि नहीं, उसको उनको मन को चाहिए, वो रस चाहिए, मैं किसी को फाइटिंग करते हुए देखूं, और किसी को रस चाहिए कोई डांस देखे, कोई युवक और युवती के पीछे प्रेम का जो रस है वो आस्वादन करना चाहते हैं, कोई ये देखना चाहता है जैसे घर परिवार में जैसे होता है ना अलग अलग प्रकार के रस, उसको देखना चाहते हैं, इसलिए वो घर घर की कहानी देखते हैं। लेकिन ये जो भौतिक जगह के जो रस है इसमें समस्या क्या है, वो जितना उसको पान करोगे वो उतना आप दुखी हो गए, उतना आप दुखी हो गए, स्वभाव है, क्योंकि वो रस जो है वो रस नहीं है, वो केवल तृष्णा मात्र है। जो वास्तविक जो रस है वो किसके पास है? भगवान श्री कृष्ण के पास है। अगर आपको फाइटिंग सीन देखना है तो क्या करो? कृष्ण का और अगासुर का फाइटिंग सीन देखो। अगर आपको कोई हीरो हीरोइन का डांस देखना है तो आप क्या देखो? कृष्ण का रासलीला देखो। अगर आपको कोई वात्सल्य का कुछ दृश्य देखना है तो कृष्ण का और यशोदा का वात्सल्य देखो। अगर कोई खेल कूद देखना है तो कृष्ण और बाल बालों का खेल देखो, क्योंकि ये परफेक्ट है, कृष्ण के अंदर सारे रस परिपूर्ण रहता है। लेकिन अब वही भौतिक जगत में प्रकाशित होता है तो ये हमको दुख प्रदान करता है, हमको केवल फ्रस्ट्रेट कर देता है। इसलिए आप क्या करते हो? टीवी चैनल बदली करते हो कि नहीं? आजकल मैंने सुना 100 से ज़्यादा चैनल हैं। 100 से कितने हैं? 350, बाप रे बाप। तो एक बच्चा जो है वो टीवी चैनल के सामने बैठता है, एक बच्चा कोई भी हो, कोई बैठी क्या करता है, उसके हाथ में क्या रहता है? रिमोट रहता है, वो चलाएगा, बस चलो दूसरा, भाई दूसरा। वो अगर एक घंटा बैठेगा तो एक घंटे में 350 चैनल घुमा देगा वो, क्योंकि एक भी चैनल उसको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन करने वाला, वो सोचता है ये ठीक नहीं, चलो दूसरा देखता हूँ, ये भी ठीक नहीं, दूसरा देखता हूँ। ये विकृत प्रतिबिंब है। इस जगत में कोई भी संबंध से उत्पन्न हुआ जो सुख है वो वास्तविकता है, भगवान के साथ हमारा जो है उसका विकृत प्रतिबिंब होने के नाते हमको इस जगत का कोई भी रस जो है वो हमको संतुष्ट नहीं कर सकता। इट कैन नॉट, केवल कृष्ण के साथ में ही हमारा जो वास्तविक रस है उसके द्वारा ही हम संतुष्ट होंगे। इसलिए आनंद रस का आस्वादन केवल कृष्ण के साथ में होगा। अन्य जगह इधर उधर जाने का प्रयास करोगे समय की बर्बादी है। तो आगे कहा गया है कि इसी श्लोक में कृष्ण का और आगे परिचय किया दिया जा रहा है। कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है, लेकिन सारे रसों में सर्वश्रेष्ठ रस क्या है? माधुरी रस है। तो इसलिए माधुर रस का भक्तों का वर्णन करते हुए इधर कहा गया है, प्रस्मिर रुचिरुद्ध तारक पाली। तो भगवान श्री कृष्ण के जो रुचि है रुद्ध, उनसे उत्पन्न हुआ जो तेज है प्रकाश है, उनका सुंदरता को देख के तारक पाली, ये दो गोपियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण के झुंड में रहते हैं, ये कृष्ण के अधीन हो जाते हैं, कृष्ण की सेविका बन जाते हैं। कृष्ण की इनका जो स्वरूप है उनकी मधुरिमा को देख के एकदम बिल्कुल फिदा हो जाते हैं, ये तारक पाली। और दो प्रकार के गोपियां हैं, कौन है वो? वो है श्यामा ललिता। श्यामा और ललिता ये दो गोपियां जो हैं वो इतने सुंदर हैं, उनके अंदर इतने अद्भुत गुण हैं, तो कृष्ण से उत्पन्न हुआ जो गुण है या उनकी सुंदरता है, उनका जो प्रेम है वो ऑलमोस्ट उनके बराबर है। इसकी वजह से कलिता कृष्ण क्या करते हैं, इन गोपियों को आलिंगन करते हैं। अभी तीसरे वर्ग की गोपियां हैं, या गोपियां नहीं बोल सकते, एक ही गोपी है तीसरे वर्ग के, कौन है वो? राधा। तो राधा प्रियान, तो राधारानी का वैभव, उनकी इनकी स्वरूप इतना अद्भुत है, इनकी सुंदरता इतना अद्भुत है, कृष्ण सोचते हैं कि राधारानी के मैं एक सेवक हूं। इसलिए वो क्या करते हैं, कृष्ण राधा प्रियान, राधारानी को आनंद देने के लिए सारे कार्य करते हैं। अभी तीन वर्ग के गोपियों को इधर वर्णन किया जा रहा है, एक जो है जो कृष्ण के अधीन हो जाते हैं, दूसरे जो है कृष्ण से मिलन होता है या उनका आलिंगन होता है, समान होता है, समान समझते हैं, और तीसरे कौन है? श्रीमती राधारानी, जो जिनको देख के कृष्ण अधीन हो जाते हैं। अब देखिए ये जो पहला श्लोक में ही रूप गोस्वामी पाद ने कितना अद्भुत तरीके से कृष्ण का परिचय दिया। एक परिचय दिया जो कृष्ण विदु है। कभी कभी मैंने अभी कहा आपको, कोई भी वर्णन किया जाता है, इनडायरेक्ट वर्णन जो है ना, इसमें ज़्यादा आनंद रहता है। तो ये काव्य का शैली है। तो कृष्ण का परिचय विदु के रूप में किया है। विदु का चार लक्षण है, जो सारे दुखों को खंडन करने वाले और सारे लोगों को, सारे चीज़ों का अतिक्रमण करने वाले और सर्व सुख प्रदान करने वाले और हर प्रकार की चीज उनसे उत्पन्न होता है, इसको सबको उत्पन्न करने वाले, सारे विश्व तत्वों को उत्पन्न करने वाले। और ये विदु कृष्ण कौन है? ये रस बॉय, सारे रसों से परिपूर्ण है। तो कोई भी रसास्वादन, कोई भी आपको सुख चाहिए, रस चाहिए, संबंध उत्पन्न करना है, केवल कृष्ण से ही संबंध होगा। बाकी लोगों के साथ संबंध बनाओगे तो आप किसी से आशा मत करना। तो एक बार मैंने प्रवचन दिया था, केवल कृष्ण के साथ ही हमारा संबंध है। तो एक माताजी ने प्रश्न पूछा, प्रभु जी हमारे संसार में बहुत सारे लोगों का संबंध है ना, क्या सब छोड़ दे क्या? तो मैंने कहा आप छोड़ नहीं सकते हो, छोड़ो मत, लेकिन आशा मत करो किसी से। हाँ, लोग बोलते हैं संबंध छोड़ने की बात करते हैं, आप छोड़ नहीं सकते हो, अगर छोड़ने के लिए जाओगे तो क्या होगा, वापस भाग के आओगे, है कि नहीं? कितनी बार पत्नी बोलती है पति को, मैं चले जाऊंगी, जाती है क्या? नहीं जाती है। कितनी बार बच्चा वही बोलता है ना, मैं नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा, जाता है क्या कभी? पति भी कितनी बार बोलता है, बस अभी झंझट खत्म हो रहा, अभी मैं जा रहा हूं, है कि नहीं? मैं जाता तो नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। लेकिन एक चीज पॉसिबल है, अगर आपको सच में कृष्ण भक्ति या प्रगति करा है ना, आप घर छोड़ने के लिए, संबंध छोड़ने के लिए प्रयास मत करो, क्योंकि जितना छोड़ने जाओगे उतना भूत रूप में पकड़ लेगा।
लेकिन
तो क्या करो, किसी से आशा मत करो, मेरा पति है वो करेगा ये करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो खुद परेशान है तो करेगा तो परेशान कर सकता, ज्यादा नहीं। पत्नी से भी ज्यादा आशा मत करो, दो रोटी खिला देंगे तो वही बड़ी बात है। कोई भी किसी, क्योंकि है ही नहीं, वो दे नहीं सकते तो बेचारा करेंगे क्या बताओ। एक ही व्यक्ति हैं जो सारे आपके अंदर जो आकांक्षाएं रसों की वो पूर्ण कर सकते हुए भगवान श्री कृष्ण, दाखिल रसामृत मूर्ति। तो उनमें से सारे द्वादश रसों में जो सर्वोच्च है माधुर्य, उनके तीन वर्ग का वर्णन कर किया हुआ है। तो तीन वर्ग कौन है? एक प्रकार की गोपियां हैं जो कृष्ण के अधीन हो जाते हैं, एक प्रकार की गोपियां कृष्ण से मिलती हैं, आलिंगन करती है, और राधा रानी के कृष्ण क्या बन जाते हैं? आदिन बन जाते हैं, सेवक बन जाते। राधा प्रियान विदुर जयति। बाद में श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराक रूपोपि तस्य हरेर पदकमलम वंदे चैतन्य देवस्य। मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जो मुझे प्रेरणा दिए, जिनकी प्रेरणा से मैं ये क्या कर रहा हूँ, भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ का रचना कर रहा हूँ। और प्रेरणा की पात्रता की अयोग्य समझते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं कि वरा का रूप हो, मैं बहुत नीच हूँ। दैन्य भाव से रूप गोस्वामी पद आगे कहते हैं, विश्राम मंदिर तया तस्य सनातन तनोर्मदाश्रय मदीशस्य भक्ति रसामृत सिंधुर्भवन्तु साध्यं प्रमोदया। तो ये श्लोक में विश्राम मंदिर तया तस्य सनातन तनोर, कृष्ण जो है वो उनको सनातन तनु कहा गया है। तो रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि मैं आशा करता हूँ ये जो ग्रंथ रचना कर रहा हूँ भक्ति रसामृत सिंधु, ये कृष्ण के लिए एक विहार स्थान बने। जैसे समुन्द्र जो है वो किसी का विहार स्थान बन सकते हैं, कि स्विमिंग कर सकते हैं, उसी प्रकार ये भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो सिंधु है ये किसका सिंधु है, किसका सागर है? भक्ति रस का सागर है। ये जो भक्ति रस का सागर में कृष्ण जो है विश्राम, ये भक्ति रसामृत सिंधु जो है कृष्ण का विश्राम मंदिर बने, यानी कृष्ण हमेशा इधर विश्राम करे, ऐसा प्रार्थना करते हुए ये भी कहते हैं कि सनातन गोस्वामी पाद भी इसी मंदिर में, इसी भक्ति रसामृत सिंधु नामक मंदिर में ग्रंथ में विश्राम करे। भक्ति रसामृत सिंधु चत्वार प्रतिभू कला जलभ्य भक्त मकरान अश्लीत मुक्ति नदिकान नमस्यामि। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ये भक्ति रसामृत सिंधु जो है ये भक्तों के लिए, किसके लिए है? उन भक्तों के लिए जो हमेशा वो भक्ति के सागर में डूबे रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको मुक्ति का कोई भय नहीं है और उनको कोई हमेशा में आनंद में रहते हैं। अभी इतना हद तक कि वो ये जो मछुआरों का जाल होता है उससे फंसते नहीं है भक्त, क्योंकि वो भक्ति रसामृत सिंधु के गहराई में चलते रहते हैं। और अन्य जितने भी कर्मकांड इत्यादि लोग हैं वो छोटे छोटे तालाब में रहते हैं, लेकिन भक्त जो हैं भक्ति रसामृत सिंधु सागर में ही वो रहना चाहते हैं। खास करके भक्तों की जो श्रेष्ठता है उनको बता के आगे भक्ति रसामृत सिंधु के सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि अन्य अन्य जो वड़भाग्नि अलग अलग प्रकार के दुष्ट सिद्धांत है उससे भक्ति रसामृत सिंधु ये सुरक्षित रहे, इस प्रकार आशा करते हुए रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि भक्ति रसामृत सिंधु के चार भाग हैं। वो है जैसे सिंधु का पूर्व भाग रहता है, दक्षिण भाग रहता है, पश्चिम भाग रहता है, उत्तर भाग रहता है। अभी रूप गोस्वामी पाद जो पूर्व भाग का वर्णन करते हुए कहा इसमें चार अध्याय है। तो भक्ति रसामृत का पहला जो भाग है उसके अंदर चार अध्याय है। सबसे पहला अध्याय में वर्णन किया गया है सामान्य भक्ति का वर्णन किया गया है, दूसरे अध्याय में साधन भक्ति का वर्णन किया गया है, तीसरे अध्याय में भाव भक्ति का, और चौथे अध्याय में प्रेम भक्ति का। ये पहला भाग है। पहला भाग में पहला जो श्लोक है जिसके अंदर उत्तम भक्ति का डेफिनेशन बताया गया है। तो प्रायः बहुत सारे लोगों को, भक्तों को ये श्लोक याद होगा, तो फिर भी हम आज इसको, सभी जो लोग इनको याद नहीं है उसको याद करने का प्रयास करेंगे, जिसके अंदर भक्ति, उत्तम भक्ति का परिभाषा का वर्णन हो रहा है। वैसे आजकल ये भक्ति का जो शब्द है वो अनेकों जगह इस्तेमाल करते हैं। आजकल कोई बोलते हैं हम देशभक्ति करेंगे, कोई बोलता है कि हम जो है इनका भक्ति करेंगे, ये बाबा जी का भक्ति करेंगे, उसका भक्ति करेंगे। आजकल बोलते सब भक्ति छोड़ दो, खाली एक ही भक्ति करो, पत्नी भक्ति करो। कोई भक्ति बोलता है इसका भक्ति करो। ये भक्ति शब्द बहुत सस्ता हो गया आजकल। जिससे रूप गोस्वामी बात को मालूम था ऐसा भविष्य होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि उत्तम भक्ति इसका परिभाषा सुनो। ये जो भक्ति के सामने तुम्हें वर्णन हो रहा है, कौन सी भक्ति का वर्णन हो रहा है? उत्तम भक्ति का वर्णन हो रहा है। तो ये उत्तम भक्ति का परिभाषा क्या है जरा हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। तो आप मेरे बाद इस श्लोक को उच्चारण करने का प्रयास करें। अन्याभिलाषिता शून्यम्, अन्याभिलाषिता शून्यम्, ज्ञानकर्माद्यनावृतम्, ज्ञानकर्माद्यनावृतम्, अनुकूल्येन कृष्णानो, अनुकूल्येन कृष्णानो, शीलनं भक्तिरुत्तमा, शीलनं भक्तिरुत्तमा, अन्याभिलाषिता शून्यम्, अन्याभिलाषिता शून्यम्, ज्ञानकर्माद्यनावृतम्, ज्ञानकर्माद्यनावृतम्, अनुकूल्येन कृष्णानो, अनुकूल्येन कृष्णानो, शीलनं भक्तिरुत्तमा, शीलनं भक्तिरुत्तमा, अन्याभिलाषिता शून्यम्, ज्ञानकर्माद्यनावृतम्, ज्ञानकर्माद्यनावृतम्, अनुकूल्येन कृष्णानो, अनुकूल्येन कृष्णानो, शीलनं भक्तिरुत्तमा, शीलनं भक्तिरुत्तमा। तो ये जो श्लोक है ये भक्तिरसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र कहा गया है। तो प्रत्येक ग्रंथ का एक परिभाषा सूत्र होता है। जैसे भागवतम का परिभाषा सूत्र है तेज हम सकलपम साम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियार व्याकुलम रोगम रजंति युगे युगे। यानी परिभाषा सूत्र का अर्थ है वो श्लोक है जिसके द्वारा सारा ग्रंथ प्रकाशित होता है। मान लो कोई चीज पढ़ना चाहते हो, आपको एक ज्योति प्रकाश की आवश्यकता है, उसके बिना आप श्लोक को नहीं पढ़ सकते हो। उसी प्रकार भागवत का कोई भी श्लोक को समझना चाहते हो आप, ये चम सकल पुमसान ये वाला श्लोक का प्रकाश के अंतर्गत ही उसको समझ सकते हो। उसी प्रकार ये जो भक्तिरसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र वाला श्लोक ये वाला है, जिसके अंदर अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, दूसरा ये दो चीजें हैं जो पहला दो लाइन में है, वो भक्ति के, उत्तम भक्ति के वो तटस्थ लक्षण माने गए। और उत्तम भक्ति के जो स्वरूप लक्षण हैं ये अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ये शब्द के द्वारा भक्ति के, उत्तम भक्ति के स्वरूप लक्षण वर्णन किया गया है। तो कोई भी वस्तु होता है उसका एक स्वरूप लक्षण होता है, दूसरा तटस्थ लक्षण होता है। यानी वो लक्षणों के द्वारा जो जिसका उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता उसको स्वरूप लक्षण कहा जाता है। यानी वो वस्तु के वो चीज़ उसका लक्षण है लेकिन उसको अलग किया जा सकता है, हमेशा नहीं रहने वाला है, उसको तटस्थ लक्षण कहा गया है। मान लीजिए आप किसी देवदत्त नामक व्यक्ति का घर ढूंढना चाहते हो, उस मोहल्ले में गए लेकिन आपको मालूम नहीं वहाँ घर कहाँ है। आप पान वाला से पूछे देवदत्त का घर कहाँ है, तो दिखाएगा देखो कौवा बैठा है ना, वो घर है। अभी आप जाओगे उस घर में, अगली बार आओगे तो कौवा कहाँ है भाई, वो चलेगा? नहीं, उस समय के लिए वो कौवा बैठा था, इसलिए वो कौवा जो है उस घर का क्या लक्षण हुआ, तटस्थ लक्षण हुआ, है कि नहीं? क्योंकि अभी कौवा है लेकिन मालूम उड़ जाएगा, किसको क्या मालूम। तो इसलिए स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण प्रत्येक वस्तु का, भक्ति का सबसे पहला लक्षण यानी स्वरूप लक्षण क्या है जानने के लिए प्रयास करेंगे। इसमें अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, शील शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो भक्ति क्या है उसका वर्णन करते हुए सबसे पहले रूप गोस्वामी बात कहते हैं शील, वो चीज जो कर्मणा मनसा वाचा किया गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी कोई काम का नहीं, इसको भक्ति करने दो, उनके मन में ऐसे विचार रहता है अभी कोई काम का नहीं है भक्ति करने दो। क्यों? वो सोचते हैं कि ये भक्ति जो है निकम्मे लोगों के लिए है, कोई काम का नहीं उन लोगों के लिए है। बहुत साल पहले की बात है, एक माता पिता एक बड़े 17-18 साल का लड़का था, उनको लेके आए तो मिलना चाहते, मैं बैठा क्या बताइए। तो पिताजी ने कहा कि आपके आश्रम में स्थान है हमारे लड़के के लिए। तो मैंने बोला क्या आप क्या कहना चाहते हो? हम चाहते हैं कि मेरा लड़का जो है आपके साथ में साधु बन के रहे। तो मिला कि बड़ी बड़ी बात है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है, हमारे मंदिर में बहुत बड़े बड़े दीक्षित भक्त हैं अनेकों अनेकों सालों से, लेकिन अपने लड़के को तो ऐसा बोला नहीं, जाओ आश्रम में रहो। हाँ, तो आप तो ऐसे क्या करते हैं, मतलब जू जाते रहते हैं उनसे। वाह बड़ी बात है, हम तो ज़रूर रखेंगे। बड़ा दिखने में बड़ा अच्छा था लड़का, एकदम हष्टपुष्ट दिखाई पड़ रहा था। तो मैंने बाद में उनकी माँ ने पूछा कि आप चिंता मत कीजिए महाराज, आप जो भी उनका खर्चा होगा हम देंगे। उन्होंने कहा आप कुछ खर्चा हो तो चिंता मत करो, हम मंदिर देखभाल करेगा उनको, आप लड़के को दे रहे हो वही बड़ी बात है, आजकल ऐसा कौन करता है। तो आपका खर्चा कोई चिंता मत करो, आपको डोनेशन दे रहा है तो ऑफिस में जाके डोनेशन जितना डोनेशन देना दे दो, आपके लड़के की जिम्मेदारी हमारा, हम देखभाल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उन पिताजी ने कहा थोड़ा उसको दवाई का कुछ खर्चा है तो वो भी चिंता मत करो, हमारे सामने भक्तियंत हॉस्पिटल दिखा देंगे बोले। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा है ना, मैंने पूछा क्या क्या समस्या क्या बताओ। तो उनकी माँ ने कहा थोड़ा उनका मेंटल प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा कि ऐसे तो हमारा कोई काम का नहीं है ये, तो आपके आश्रम में रहेगा थोड़ा भजन करेगा कुछ उद्धार हो जाएगा उसका। अब देखिए लोगों के मन में ऐसी धारणा है, अगर हमारा कोई काम का नहीं है तो डाल दो डस्टबिन। मान लो कोई आपका काम का नहीं है, कचरा है, तो क्या करोगे आप? डस्टबिन में डाल दोगे। तो लोगों के मन में ऐसा है कि ये आश्रम जो है वो डस्टबिन है, और हमारा कोई काम का नहीं है तो दे देंगे। हाँ, अगर मैं जब काम का नहीं रह जाता हूँ तब आ जाऊंगा। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी अभी बस 5 साल बाद में रिटायर हो जाऊंगा ना, बाद में आ जाऊंगा। इसका मतलब क्या, रिटायरमेंट मतलब क्या है? सरकार आपको बोलती है या कंपनी आपको बोलती है आप कोई काम के नहीं हो चले जाओ, इसको रिटायरमेंट बोला जाता है। यानी जब मैं कोई काम का नहीं रह जाऊंगा तब आऊंगा। तो लोगों के मन में ऐसी बात रहता है, वो नहीं है। भक्ति मतलब शील, मतलब कार्य करना, डूइंग समथिंग विद बॉडी माइंड एंड स्पीच। हाँ, ये सोचना कि बस कुछ नहीं करना भक्ति है, ये गलत बात है। ये शील धातु है, किसका धातु है? क्रियात्मक धातु है। क्या है क्रिया? कर्मणा मनसा वाचा, कुछ ऐसी चीज है जो करना होता है, जो कुछ चीजें नहीं करना होता है। ये दोनों को शील शब्द के द्वारा सूचित किया जा रहा है। इसलिए जब तक कृष्ण के लिए कुछ करेंगे नहीं उसको उत्तम भक्ति नहीं माना जाता है। करना चाहिए, वी हैव टू डू। बाद में ये जो शीलनम, इसके पीछे एक शब्द है अनुशीलनम। ये अनु शब्द का अर्थ क्या है? अनु मतलब उसका दो अर्थ है। एक अर्थ है जो हमेशा किया गया चीज है उसको अनु कहा जाता है, और दूसरा अर्थ क्या अनु का? ये अनुगत्य में करना, यानी किसी गुरु के निर्देशन के अनुसार करना। तो गुरु के निर्देशन के अनुसार नहीं करोगे, गुरु से दीक्षा नहीं लेते हुए ऐसे ही करोगे तो उसको भक्ति नहीं कहा जाता है। इसलिए गुरु का निर्देशन के अनुसार हमेशा किया गया जो कार्य है उसको भक्ति कहा जाता है, उसको उत्तम भक्ति कहा जाता है। तब देखिए अनुशीलनम, लेकिन किसके लिए करना चाहिए? कृष्ण के लिए। तो इसलिए उसको कृष्णानुशीलनम कहा गया है। वो कार्य हमेशा गुरु के निर्देशन के अनुसार कृष्ण के लिए किया गया जो कार्य है, कोई भी कार्य हो सकता है, कृष्ण के लिए जब किया जाता है, हमेशा किया जाता है, गुरु के निर्देशन के अनुसार किया जाता है, उसको उत्तम भक्ति कहा जाता है। इसलिए कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या है इधर, कृष्ण मतलब कृष्ण के संबंधित वस्तुओं के साथ भी, जैसे गुरु के भी उत्तम भक्ति कर सकते हो और तुलसी महारानी के भी उत्तम भक्ति कर सकते हो और कृष्ण के जितने भी अवतार हैं उनको भी उत्तम भक्ति कर सकते हैं। तो कृष्ण मतलब कृष्ण के संबंध में जितने भी हैं उन सब की भक्ति करना, उसको उत्तम भक्ति कहा जाता है। तो बाद में कोई प्रश्न पूछे तो स्मरण करना जो है भगवान की भक्ति है कि नहीं है, तो कंस भी तो स्मरण कर रहा था, कंस जो है उनको हमेशा डर लगता था, ये कृष्ण आके मुझे मार देंगे डर लगता था, 24 घंटा कृष्ण का स्मरण करता था। तो ये कंस का स्मरण करना भक्ति नहीं है क्या, भक्ति है कि नहीं, कंस ने भक्ति किया, हाँ किया कि नहीं, हाँ स्मरण तो किया ना, और कंस की भक्ति से कृष्ण को आनंद हुआ कि नहीं, कृष्ण और कंस के बीच में फाइटिंग चल रहा था, कृष्ण को मजा आ रहा था, लेकिन फाइटिंग हो रहा था कृष्ण कंस के साथ, तो सब लोग देख रहे, वाह वाह कर रहे, कृष्ण को अच्छा लग रहा था, देखो आप एट लास्ट मैं किस युद्ध कर रहा हूं। अभी कंस ने कृष्ण को प्रसन्न किया कि नहीं, अब देखो क्या कंस ने उत्तम भक्ति किया, नहीं किया, क्यों, कृष्ण कंस से प्रसन्न होने पर भी कंस का जो कार्य उत्तम भक्ति नहीं कहा जाता, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने की हेतु से नहीं किया। इसलिए क्या कहा गया इस श्लोक में, अनुकूलेन, यानी कृष्ण के अनुकूल किया गया कार्य को ही भक्ति कहा जाता है। अब देखिए यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को दूध पिला, यशोदा दूध पिला रही थी, तुरंत उनको याद आए मैं स्तव के ऊपर दूध रखी हूं, तुरंत कृष्ण को नीचे रखा, दूध को देखभाल करने गई, कृष्ण क्या हो गए यशोदा से नाराज हो गए। अभी कृष्ण को कोई जो नाराज करता है वो भक्त होता है क्या, क्या कृष्ण को नाराज करने से भक्ति हो सकता है, एक ओर कंस की कार्य से कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए, दूसरी ओर यशोदा के कार्य से कृष्ण नाराज हो गए, तो कौन भक्त है कौन अभक्त है, क्यों भाई, यशोदा से नाराज हो गए कृष्ण, कंस से प्रसन्न हो गए कृष्ण, कंस भले ही कृष्ण को प्रसन्न किया लेकिन कंस का हेतु नहीं था, उद्देश्य प्रसन्न करना नहीं था, कृष्ण को प्रसन्न करना उनका हेतु नहीं था। दूसरी ओर यशोदा कृष्ण को भले ही अप्रसन्न किया लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं। इस तरीके से अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, कोई भी कार्य हो, फाइटिंग करना भी क्यों ना हो, ग्वाल बाल कभी कृष्ण से फाइटिंग करते कि नहीं, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक कार्य जो गुरु के निर्देशन के अनुसार हर रोज किया गया, नियमित रूप से किया गया, कृष्ण को प्रसन्न करने के हेतु किया गया, उस कार्य को उत्तम भक्ति कहा गया है। लेकिन ये जो उत्तम भक्ति के पीछे एकमात्र हेतु क्या है, वो एक ही इच्छा हो सकती है, क्या है इच्छा, मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं, अन्याभिलाषिता शून्यम, इसका अर्थ क्या है, कोई और अभिलाषा के बिना, एक अभिलाषा रखना चाहिए, एक ही भक्त का एकमात्र अभिलाषा है, क्या वो अभिलाषा, एक इच्छा है, क्या वो कृष्ण को प्रसन्न करना, आई वॉन्ट टू मेक कृष्ण हैप्पी। इसलिए भक्ति सामने सिंधु में आगे में रूप गोस्वामी पाद एक एक फॉर्मूला देते हैं, एक ऐसा एक सूत्र देते हैं जिसके द्वारा जिस सूत्र के अनुसार एक भक्त को अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो वो सूत्र क्या है, मेरे बाद उच्चारण करने का प्रयास करें, बोलिए मेरे बाद, भजनीय परमा पुरुष सुखम ही स्वसुखत्वम। इसका अर्थ क्या है कि भजनीय परमा पुरुष, एकमात्र भजनीय व्यक्ति कौन है, कृष्ण है, तो उस कृष्ण भजनीय परम पुरुष का सुख ही सुखम ही स्वसुखत्व, मतलब क्या है, मेरा सुख, कृष्ण का सुख में ही मेरा सुख है, ये भक्ति का जीने का फॉर्मूला है। अगर खुद सुखी होने का प्रयास करोगे कभी नहीं हो पाएगा, और जितना प्रयास करोगे उतना दुखी हो जाओगे, और जितना कृष्ण को सुखी करने का प्रयास करोगे, प्रत्येक कार्य के पीछे उद्देश्य है। जब करते हुए सब क्या सोचना चाहिए, कृष्ण प्रसन्न हो जाए। हम कोई भी मंदिर में आ रहे हैं समझ लीजिए, तो किसके लिए आना चाहिए, क्या उद्देश्य आना चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करें। हमारा उद्देश्य अगर कृष्ण को प्रसन्न करने का है, प्रत्येक कार्य, झाड़ू मारने का कार्य हो, या प्रवचन देने का कार्य हो, या कीर्तन करने का कार्य हो, चाहे मंदिर निर्माण करने का कार्य हो, सारे कार्य के पीछे एकमात्र हेतु होना चाहिए। क्या है वो? आई वॉन्ट टू मेक कृष्ण हैप्पी, और कृष्ण के सुख में ही मेरा सुख है। ये इसने कहा गया है अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई और अभिलाषा भी नहीं, एक अभिलाषा रख सकते हैं। क्या है वो? कृष्ण को प्रसन्न करे, कृष्ण को सुखी करे। और दूसरा पॉइंट क्या है तटस्थ लक्षणों में, वो है ज्ञान कर्मा जनावृतम। ऐसा ज्ञान, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा हमारी भक्ति जो है ढक जाए, आवृत हो जाए। आजकल लोग जो है कर्मकांड की विधियों को बहुत पालन करते हैं, लेकिन उसके द्वारा भक्ति जो है संकुचित हो जाता है। वो जिम्मेदारियां कर सकते हो, निभा सकते हो, जो भक्ति को ढकना दे। अगर जबरदस्ती कुछ कर्मकांड के कार्यों को करना भी पड़ता है ना, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कर सकते हो, विश्वास के बिना कर सकते हैं, करना पड़ता है इसलिए करना पड़ता है, लेकिन सब झंझट है। चलो करके खत्म कर देते हैं, काले मंदिर जाते हैं। तो ये भक्ति का परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ भक्ति। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मात्यनावृत, ये भक्ति के क्या हुए, वो तटस्थ लक्षण हुए। और अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, ये तीन जो है भक्ति के क्या हुए, उत्तम भक्ति के स्वरूप लक्षण हुए। तो सार रूप में ये श्लोक के द्वारा हमको रूप गोस्वामी पाद इसी बात को कहते हैं कि प्रत्येक कार्य के पीछे हमेशा यही स्मरण करते रहो। क्या स्मरण करना है? हाउ टू मेक कृष्णा हैप्पी, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं। खाली स्मरण करने मात्र से कृष्ण आपके कृष्ण कृपा को प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण जो है आपको बहुत सुविधा देंगे प्रसन्न करने के लिए, सो मच आप सोच भी नहीं सकते हो। बलि महाराज जो है खाली उन्होंने विचार किया था, प्रणाम करो, उन्हें मन ही मन में स्मरण किया था, करने मात्र से क्या हुआ, कृष्ण ने उसके ऊपर इतना दया दिखाई, अनुकंपा दिखाई। ऐसे ही अनेकों अनेकों जगह शास्त्रों में इन सब चीज़ का वर्णन है, लेकिन सार रूप में आज अन्य अभिलाषा शून्य में श्लोक को सीखा, और कृष्ण गौड़ीय वैष्णव धारा के अनुसार कृष्ण का परिचय क्या है हमने वो सीखा, और साथ साथ में हमने वो फॉर्मूला सीखा जिसके द्वारा हमारा जीवन व्यापन किया जा सकता है। वो क्या है? वो भजनीय परम पुरुष सुखम में सुखत्वम, कृष्ण का सुख में ही मेरा सुख है। ये जो सोचता है 24 घंटा उसका जीवन बड़े आनंद में रहता है, और उत्तम भक्ति वो करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है? ठीक है, मेरा प्रश्न है हमारा मंदिर का ओपनिंग डेट कब है मालूम है आपको? 26 तारीख को है सितंबर। तो आप सब उसके लिए अभी क्या बैठिए बैठिए, हरि बोल, सबको बैठा दी, ये ठीक नहीं है 2 घंटे से इंतजार कर रहे प्रसादम का मैं पहले भी कहा था प्रसादम पहले खिला दीजिएगा नो प्रॉब्लम, संडे फीस्ट है 12 o'clock 12 to 1 फीस्ट ऐसा कर सकते हैं, तो 12-1 बजे के बाद प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है? नहीं हो तो हमारे मंदिर का ओपनिंग है, और उसके लिए आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, अभी आखिरी भाग है, जैसा होना था रनिंग रेस होता है ना, हाँ उसमें क्या होता है, दौड़ते रहते हैं, जब आखिरी भाग होता है तो क्या होता है, एकदम फास्ट दौड़ते हैं कि नहीं, और जितना ताकत है उसको निकाल के दौड़ते हैं तो आप सबसे ये निवेदन है, आपके पास जितना भी सामर्थ्य है, जितनी भी ताकत है, सब लगा दीजिए, अभी आगे 4 महीना बाकी है, और हमारे पास फॉर्म से तैयार है, खास करके 26 तारीख शाम को आप सबको अभिषेक करने का मौका मिल रहा है, थोड़ा सा उसका स्पॉन्सरशिप है। राधा गिरिधर जी नए मंदिर में जाएंगे, आप सबको अभिषेक करने का मौका मिलेगा। तो 26 तारीख को खास करके आपके लिए रखा है शाम को, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या अगर आप नहीं कर सकते दूसरे से आप कराइए। दूसरी बात यह है, आप सबको मालूम है कि लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम करके कुछ है, हाँ, इस्कॉन का। आप में से कितने लोग हमारे संस्था के लाइफ मेंबर हट रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। अभी 18 जुलाई समझ लीजिए, 15 जुलाई समझ लीजिए रथ यात्रा, ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो 55,555 होने वाला है। तो आपके पास एक मौका है, जल्दी से जल्दी जो नहीं है आज ही फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आप किसी को मनाना चाहते हो आप बता सकते हो, बाद में मत बनो, बढ़ जाएगा अभी बन जाओ। तो मैं आशा करता हूँ आप जितने लोग बैठे हैं जितना हो सके उतने लोगों को अभिषेक में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और साथ साथ में हमारा जो लाइफ मेंबरशिप स्कीम है उसमें आप उसको दर्ज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अगले 4 महीने में अभी जुलाई तक कम से कम 500 लाइफ मेंबर बन जाए। तो वो मैं जाऊंगा तो कोई बन कोई देगा नहीं पैसा। तो लेकिन डर जाए क्यों आए हमारे घर में। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा था अपने चंड रमण को, हमारे गुरुकुल में गुप्त रूप में वैष्णव आ रहे हैं और हमारे प्रहलाद का दिमाग खराब कर रहे हैं। इसलिए आप सब जो है गुप्त रूप के वैष्णव, पैंट शर्ट वाले वैष्णव। तो इसलिए आप अलग अलग कंपनी में जा सकते हैं, अलग अलग घरों में अड़ोस पड़ोस में जा सकते हैं, और जितना शक्ति जितना सामर्थ्य है भगवत प्रीत्यर्थम राधा गिरिधारी की प्रसन्नता के लिए संकल्प ले ले कि मैं अभी आखिरी दौड़ करूंगा, कहाँ के लिए, मंदिर का निर्माण कार्य के लिए। तो आप सब जितना से उतना लाइफ मेंबरशिप फॉर्म्स, उतना सारे आप ये फॉर्म्स है अभिषेक का फॉर्म ले सकते हैं, क्योंकि हमारा मंदिर का निर्माण कार्य आखिरी में बहुत सारा लगता है। हमारे मंदिर में उद्घाटन के समय अनेकों अनेकों जगह से लोग आएंगे, उन सबको अच्छी तरह से स्वागत करना होगा। इसलिए पहले से आपको कह रहा हूँ, ये जो सितंबर के जो समय है, हाँ 25, 26 ही समझ लीजिएगा, 24, 25, 26, 27 आप अरे गांव जाना, इधर जाना, बेटे का शादी करना, मामा का इसमें जाना, वो सब चीज़ें बंद कर दीजिएगा कम से कम वो टाइम में। लेकिन वो उद्घाटन बहुत अच्छा होने के लिए पहले से तैयारी करना पड़ेगा, है कि नहीं? आपके घर में इंटीरियर होता है कितना तकलीफ होता है कि नहीं? तो अभी आपका समझिए ये भी आपका घर है, यही एक्चुअली ये भी क्या यही आपका घर है, और जितना हो सके उतना मेहनत करते हुए आप फंड रेज करने का प्रयास करें। एक है, दूसरा एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, जगन्नाथ रथ यात्रा है बोरीवली में, योगी नगर में, एक्सर रोड पे लक्ष्मीनारायण मंदिर से शुरू होगा, तो आप सब रथ यात्रा में भाग ले सकते हो। और दूसरा भी है, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज आज आ रहे हैं और उनके द्वारा 4 दिन का जगन्नाथ कथा होगी, और आज से 22 तारीख तक, और 23 तारीख से श्रील प्रभुपाद जी की एक बहुत करीब शिष्या है जिनका नाम है नारायणी देवीदासी, जो प्रभुपाद जी का शिष्य है, उनके द्वारा भी बहुत सुंदर प्रवचन होगा, अंग्रेजी में होगा, हिंदी अनुवाद होगा, तो इसमें भी आप भाग ले सकते हैं। तो श्रवण कीर्तन करने का मौका मिल रहा है, उत्सव में भाग लेने का मौका मिल रहा है, और मंदिर निर्माण करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ा भाग्य क्या है? लेकिन भाग्य का पूरा फायदा लेना आपके हाथ में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते शरीरा विद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्ये जीवाते लोभ माया सुदुर्मते ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दया माय करी बारे जीवा जाय स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई सही अन्न अमृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाकुर श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा गिरधारी जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी गौर निताय महाप्रसादम की शील प्रभुपाद की
जी। हमारा माला छूट गया बाहर था तो अनाउंस करिए किसी पाया साढ़े बारह बजे
छूट गया है
हाँ छूट गया था माला नहीं मिल रहा है।
हरे
हरे कृष्णा प्रभु
हरे कृष्णा। एक प्रभु जी का माला गुम गया है, अगर किसी को मिला है तो कृपया यहाँ पर आकर के उनको दे दीजिए या टेंपल कमांडर के पास जमा कराइए कृपया। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
बोला बोला
हरे कृष्णा। प्रभु जी का माला गुम गया है, अगर किसी को मिल जाए तो यहाँ जमा कर दीजिए। हरे कृष्णा माला
प्रसाद के बाद तुरंत बस है।
हाँ
फिर चार दिन कथा जगन्नाथ कथा ऊपर 7-9। देखो प्रभुपाद का कृपा से तुमको क्या क्या मिलता है, किधर मिलेगा
है ना, घर बाजू में है और कुछ
अभी 25 है, 55,000 होने वाला है तो अभी है, अभी भी चांस है, बाद में 50 हाँ बाद में 55 हो जाएगा
तो
भारी पड़ेगा इसलिए फायदा उठाओ फायदा उठाओ। हाँ हाँ अभी इससे कम है। हाँ
प्रसाद लीजिए।